الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کوئی بھی نیکی اپنے کام کو پہنچتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں میں خیر اور برکت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. رہی کو مختوم کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج ہمارا ٹاپک ہے دعوت کے اثرات. پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اسلام کی دھاک دلوں پر بیٹھی, کہ کہاں کسی ایک کے آنے کی خوشی تھی اور اب وفود کے وفود یعنی گروہوں کے گروہ دین میں آنے لگے, کچھ بائے ہک بائے کچھ کرک. یہ سنت ہے اللہ کی, شروع کے لوگ جیسے ہوتے ہیں, مشکلات اور آزمائشوں کی چکی سے گزرے ہوئے, ان کا مقابلہ کبھی کوئی نہ کر سکا. کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 611, دعوت کی کامیابی اور اثرات. اور یاد رکھیے کہ فتح کو سنبھال کے رکھنا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ناکامیوں اور محرومیوں کے پرچوں میں پاس ہو جاتے ہیں, لیکن کامیابیاں ان کو راس نہیں آتی. تھوڑی سی کامیابی کیا ملی کہ اچھلنے لگ گئے, کپڑوں سے باہر آنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی, وہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے کام کرنے تھے. ان کو نتائج نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے, وہ اپنے رستوں پہ چلتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی ایسے ہی لوگوں کے نقش قدم پہ رکھے. اگر دنیا میں کامیابی مل گئی تو ایک بونس ہوگا. ہم کامیابیوں کے لیے کام نہیں کر رہے, ہم تو راستے ہموار کرنے والوں میں سے ہیں کہ ہمارے بعد بھی جو لوگ ان راستوں پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں ویلکم کہے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات تھے دعوت کی کامیابی کے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں. بڑا طویل سفر تھا یہ, بڑی کتاب ہے. کب کہاں شروع ہوئی, کیسے پوری ہوئی, پھر اللہ نے یہ پوری کروا دی تھی مجھ سے, یہ تو ابھی دوبارہ ہو رہی ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں دوبارہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ ان کی کچھ ضرورت ہوتی ہے. شاید آپ میں سے کسی کی ہدایت مطلوب تھی جو اللہ نے ان آخری چیپٹرز کو مجھ سے دوبارہ پڑھوایا, ورنہ ہو سکتا ہے ہم بطور خاص یہ آخری حصہ نہ پڑھتے. شاید آپ میں سے بھی کسی کے لیے اب آگے اس میں کچھ نہ کچھ میسج ہوگا, یہ اللہ جانے اور آپ جانے. میں تو ہمیشہ ہی پڑھا کے خوش ہوتی ہوں, اور اگر کبھی کوئی ریکارڈنگز ادھر ادھر ہو بھی جائیں, سسٹمز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ظاہری بات ہے انسان چلے جاتے, یہ تو مشینیں ہیں, تو میں ان کو کہتی کوئی بات نہیں, میں بھی ہوں نا, تو مجھ سے کرا لیں. میں نہیں ہوں گی تو کوئی اور کر دے گا, لیکن گھبرایا نہ کریں. تو یہ ہمارا آج کل جو سیشنز چل رہے ہیں یہ اسی کی ری ریکارڈنگ کے ہیں. سوچا اکیلے کرنے کی بجائے ساتھ کچھ لوگوں کو ڈال دیں, لیکن اس میں اتنی برکت اللہ دے گا یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جو لوگ یہ حصہ سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کتاب کو شروع سے بھی شروع کریں گے یوٹیوب پہ اور اسی طرح سے فیس بک پہ, تاکہ جن ساتھیوں کو اس کا مزہ آنے لگا تو اب وہ شروع سے بھی اپنے اون پہ سیلف بیس بھی اس کو سنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب آخری دن ہے آپ کی زندگی کے. کسی کو نہیں پتا تھا کتنا کامیاب لیڈر, جس کو رہبر کامل کہا اور کسی جگہ ان کو بہترین اسوہ حسنہ کہا, اب وہ بھی شمع بس ٹمٹمانے والی ہے. کیا پتہ چلا کہ کل من علیہ فان, بڑے سے بڑا لیڈر, کامیاب سے کامیاب لیڈر, محبت سے بھرے ہوئے ہمارے بڑے, یہ سب چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کے, اور ہم میں سے صرف وہی کھڑا رہے گا جو اپنے اون پہ اللہ پہ نظریں لگا کے کام کر رہا ہے. کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کا جانا یا نہ جانا نہیں ہوتا, ایمان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہوتا ہے, اور یہ نصیب کی باتیں بھی ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اگر تو نے آج تک ہمیں کھڑا رکھا ہے تو مرتے دم تک کھڑا ہی رکھنا, کیونکہ اب ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ نیا کرنے کو. ہم نے تو زندگیاں اس پہ کھپا دیں اور ہماری تو کوئی اور خوبی بھی نہیں ہے. تو کیا دیکھیں گے, یہ کہتے ہیں کہ آگے کچھ لکھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی سی مرادیں اچٹتی, یعنی ایک طائرانہ نگاہ, ایک موٹی سی نظر ڈال لی جائے جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے, اور جس کی بنا پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا. سیادت کہتے سرداری کو, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر پوش رات میں کھڑے ہوں مگر تھوڑا, और फिर या युहल मुद्दसर कुम फानजर, ए कम्बल पोश उठ हर लोगों को संगीन इंजाम से डरा दे। ये हैं इब्तदाई वही की बातें। आप सब जानते हैं इक़रा बिस्मि रब्बी का से वही का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद की जो फौरन आने वाली आयात थी, या जो कह लीजिए कि बिल्कुल शुरू शुरू दौर की, उसमें सूरत मुज़म्मिल और मुद्दसर का ये हिस्सा भी था। और आपको जब उठने का हुक्म दिया, फिर क्या था, आप तो उठ खड़े हुए और अपने कंधे पर इस रुए ज़मीन की सबसे बड़ी अमानत का बारे गिरा उठाए मुसलसल खड़े रहे। यानी सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जंगो जिहाद और तगो ताज का बोझ। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि एक दफ़ा का लफ्ज़ है कुम, और ऐसे खड़े हुए कि 23 साल फिर खड़े ही रहे। फिर मक्का में थे तो खड़े थे, ताइफ में गए तो खड़े थे, मदीना क्या, हबशा के करीद क्या, आप तबूक के मैदान तक खड़े ही रहे। कहीं तबलीग करनी पड़ी तो वो की, और कहीं तीर चलाने पड़े तो वो चलाए, लेकिन एक बंदा जब खड़ा हो जाता है, अल्लाह उससे मुख्तलिफ काम भी ले लेता है। आपने इस इंसानी ज़मीर के मैदान में जंगो जिहाद और तगो ताज का बोझ उठाया, जो जाहिलियत के वहमों यानी ओहाम और तसव्वुरात के अंदर गर्क था। यानी उस दौर में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी, वहम आ चुके थे, तसव्वुरात थे और जंगें थी और जिहाद थे। आपने इंसान के ज़मीर को जगा दिया, आप ये कह लीजिए, जिसे ज़मीन और इसकी गुनागुन कशिश के बार ने बोझल कर रखा था। यानी दुनिया की तरफ इतनी रग़बत हो गई कि साकल्त मिलल अर्द वाली कैफियत नज़र आने लगी, जो शहाबात की बेड़ियों और फंदों में जकड़ा हुआ था। यानी इंसान जब ख्वाहिश में पड़ जाता है ना, फिर वो अपना ही गुलाम बन जाता है। उसको खुद नहीं पता होता कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं किस लिए खा रहा हूँ, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। वो शहवात हैं, हुब्बुश शहवात। कुरान सूरत आल इमरान के आगाज़ में कह देता है, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, लोगों के दिलों में शहवात की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई। तो ये जो ख्वाहिशात हैं ना, ये बंदे को जीने नहीं देती। ज़रूरियात तो पहले ही थोड़ी सी हैं, हमारी नीड्स पूरी होती हैं तो हम वॉन्ट्स पे आने लगते हैं, और जब वांट्स पूरी होती हैं तो फिर हम उससे भी हलमी मज़ीद पे पहुंचने लगते हैं। और जब इस ज़मीर को अपने बाद सहाबा की सूरत में जाहिलियत और हयात अर्जी के तह दर तह बोझ से आज़ाद कर लिया, तो एक दूसरे मैदान में एक दूसरा मार्का, बल्कि मार्कों पर मार्के शुरू कर दिए। यानी दावत इलाही के वो दुश्मन जो दावत और इस पर ईमान लाने वालों के ख़िलाफ़ टूटे पड़ रहे थे, और इस पाकीज़ा पौधे को पनपने, मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ने, फिज़ा में शाखें लहराने और फलने फूलने से पहले इसकी नमोगाह ही में मार डालना चाहते थे। यानी दुश्मन चाहते थे कि इस्लाम का पौधा यहीं ख़त्म हो जाए, जड़ें ही ना पकड़े, ताकि फैलना फूलना तो बाद की बात है। इन दुश्मनाने दावत के साथ आपने पहम यानी मुसलसल मार्का आराइयाँ शुरू की, और अभी अब जज़ीरतुल अरब के मार्कों से फारिग न हुए थे कि रूम ने इस नई उम्मत को दबोचने के लिए इसकी सरहदों पर तैयारियां शुरू कर दीं। फिर इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान अभी पहला मार्का यानी इस ज़मीर का मार्का ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये दायमी मार्का है, समझ रहे हैं ना। यानी पहले अंदर की जंगें जीतनी पड़ती हैं, बाहर की बात में होती हैं, बाहर की वही जीत पाते हैं जो पहले अंदर की जंग में जीत चुके होते हैं। इसमें शैतान से मुकाबला है, और वह इंसानी ज़मीर की गहराइयों में घुसकर अपनी सरगर्मियां जारी रखता है और एक लहजे के लिए ढीला नहीं पड़ता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इल्लाह के काम में जमे हुए थे और मुतफरिक मैदान के पहम मार्कों में मसरूफ़ थे। दुनिया आपके कदमों पर ढेर थी, मगर आप तंगी और तुर्शी से गुजर बसर कर रहे थे। अहले ईमान आपके गिरदा गिर्द अमन और राहत का साया फैला रहे थे, मगर आप जहदो मशक्क़त अपनाए हुए रात में क़याम फरमाते थे। आप जहदो मशक्क़त अपनाए हुए थे, मुसलसल और कड़ी मेहनत से साबका पड़ रहा था, मगर इन सब पर आपने सब्र जमील अख्तियार कर रखा। किसी को ज़िंदगी गुजारनी है तो ऐसी गुजारें, किसी को रोल मॉडल बनाना है तो इस प्यारे नबी को बनाइए। आज तो चीदा चीदा कोई आपको मिसालें मिल जाएं तो हम उन्हीं को बहुत ही अच्छा समझ जाएं। पूरी उम्मत को ये लाइफस्टाइल अल्लाह के नबी दे कर गए थे कि एक मार्का ख़त्म तो दूसरा तैयार, कभी दावत का मार्का, कभी जिहाद का मार्का, कभी लोगों के ज़मीरों को जगाने की बातें। लेकिन आपकी ज़िंदगी जहदो मशक्क़त से पैरा थी। आपके मेरे लिए फारिग रहने का वक्त नहीं है, सुस्त होने का वक्त नहीं है। जिधर आप सुस्त हुए, शैतान ने आपको दबोच लेना। इसलिए एक कमिटमेंट पूरी होने से पहले ही दूसरी पकड़ लीजिए, एक की खुशी और जश्न मनाने से पहले दूसरे की इब्तिदा करवा लीजिए, तो सारी ज़िंदगी आप अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद बन के चलेंगे, चाहे आपने कभी तीर न तलवार पकड़ा। और जहाँ मुश्किलात, घर की, बाहर की, लोगों के रवैये, तो सब्र जमील, रातों की कुछ घड़ियाँ अल्लाह के सामने खड़े हो जाइए, और सारी दुनिया से कट के वतबत्तल इलैहि तबतीला, वतबत्तल इलैहि तबतीला पे अमल कीजिए, इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया। इसी तरह आपने मुसलसल और पहम यानी कंटिन्यूस मार काराई में 20 बरस से ऊपर गुजार दिए, और इस दौरान आपको एक मामला दूसरे मामले से गाफिल न कर सका, इसको हाईलाइट कीजिए। हम एक चीज़ देखने लग जाएं तो दूसरी से गाफिल, दूसरी करें तो पहली खराब, आगे जाते जाएंगे पीछा बिगड़ेगा नहीं। आपने ज़िंदगी के सारे अप्स एंड डाउन में हर मामले पे खुद नज़र रखी, यहाँ तक कि इस्लामी दावत इतने बड़े पैमाने पर कामयाब हुई कि अक्लें हैरान रह गई। हाईलाइट कीजिएगा, ये है असल में कामयाबी का गुर। लोग कहते हैं रिसोर्सेज बहुत होंगे तो काम होंगे, लोग कहते हैं माल होगा तो होंगे, नहीं, इस्लामी दावत कामयाब कब होती है? जब लीडरशिप पे फाइज लोग और उनके साथ वाले रात दिन काम करते हैं। आप देखिए, फौजी जागते हैं तो आवाम सोती है ना, जंग लगी हो तो दुश्मन सर पे खड़ा होता है, तो फौजें सरहदों पे होती हैं तो आप मैं घरों में सो जाते हैं ना। तो जो बंदा अपने आप को इस लेवल पे ले आए कि मैं हूं ना अल्लाह के रास्ते का सिपाही, तो फिर उसका जागना उम्मत की जिंदगी होता है। सारा जजीरतुल अरब आप किताबे फरमान हो गया, उसके उफक से जाहिलियत का गुबार छट गया, बीमार अकलें तंदुरुस्त हो गईं, यहाँ तक कि बुतों को छोड़ छोड़ बल्कि तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि बुतों को छोड़ बल्कि तोड़ दिया गया, तौहीद की आवाज़ों से फिजा गूंजने लगी, ईमान जदीद से हयात पाए हुए सहरा का शबिस्ताने वजूद अजानों से लरसने लगा, और इसकी पहनाइयों को अल्लाह अकबर की सदाएं चीरने लगीं। कुर्रा कुरान मजीद की आयतें तिलावत करते और अल्लाह के अहकाम कायम करते हुए शमाल और जनूब में फैल गए। अल्लाह अकबर, मुझे तो बिल्कुल पैगंबर इनकलाब याद आ रहा है। सलेसन कितना बड़ा इनकलाब, कितना बड़ा रेवोल्यूशन था, पता कर चला कि ज़िंदगी में बड़े बड़े काम थोड़े रिसोर्सेज के साथ ही हुए हैं। अमूमन बिखरी हुई कौमें और कबीले एक हो गए, अल्लाह आज की इस बिखरी हुई उम्मत को भी एक कर दे। इंसान बंदों की बंदगी से निकल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गया, ये है या का नाबुद या का नस्ताई। अब ना कोई काहिर है ना मखूर, यानी ना किसी पे कोई कहर तोड़ता है और ना वो जिस पे टूटे, ना मालिक है ना ममलूक, ना हाकिम है ना महकूम, ना जालिम है ना मजलूम, बल्कि सारे लोग अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं। अल्लाह ने इनसे जाहिलियत का गरूर और नहवत और बाप दादा पर फख्र का खात्मा कर दिया। अब अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई बर्तरी नहीं। बर्तरी का मेयार सिर्फ तकवा है, वरना सारे लोग आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से थे। क्या खूबसूरत इनकलाब नबी के जरिए अल्लाह ने पैदा किया, आज उससे हजारों गुना ज्यादा रिसोर्सेज है मुसलमानों के पास। लेकिन क्या हो गया हमें? हकीकत है कि वो तारीख साज थे, तारीख बना के चले गए, हम तो अभी तक खुद साज बनने की कोशिशों में अपने भी पाँव पे खड़े नहीं हुए। शायद वो कोई नई ज़िंदगी मांगेंगे अल्लाह से कि जिसमें हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर सकें, वरना जिस रफ्तार से आज हम चल रहे हैं इससे तो कोई तब्दीली आती नहीं दिखती। गरज इस दावत की बदौलत अरबी वहदत, इंसानी वहदत और इज्तमाई अदल वजूद में आ गया। नौ इंसानी को दुनियावी मसाइल और उखरवी मामलात में सआदत की राह मिल गई। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ज़माने की रफ्तार बदल गई, रुए ज़मीन तब्दील हो गया यानी मुतगैर, तारीख का धारा मुड़ गया और सोचने के अंदाज बदल गए। ये नोट कीजिए, सबसे बड़ा कारनामा आपका ये था, आपने इंसान को बदल दिया, इंसान की सोच बदल दी, इंसान के जीने मरने के मकासद बदल दिए, छोटे छोटे मसाइल से निकाल कर आखिरत के बड़े बड़े मसाइल में उलझा दिया। और ये तब्दीली लाना आज के दौर की अशद ज़रूरत है, तब्दीली आ नहीं सकती, आप दीन का काम कर नहीं सकते जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ना बदल लें, वरना तो हर वक्त के आंसू हैं और हर वक्त की धमकियां हैं। कभी एक का मुंह देखो, कभी दूसरे का मुंह देखो, कभी एक का मिजाज बदल गया, कभी दूसरे का बदल गया, तो अब इतना, अब से इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हमने इंशाल्लाह पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने घरों को ठीक करना है, पहले सोच बदलनी है, फिर आगे बढ़ना है। वरना याद रखिएगा कि फ्रिक्शन में तो इंसान की सारी कुव्वत ही चली जाती है। इस दावत से पहले दुनिया भर जाहिलियत की कार फरमाई थी, इसका ज़मीर मुताफ़न था, यानी बदबू आ रही थी उसमें, ताफ़ुन फूट रहा था, और रुख बदबूदार थी, कदरें और पैमाने मुख्तल थे, जुल्म और गुलामी का दौर दौरा था, यानी हर जगह गड़बड़ थी। फाजिराना खुशहाली और तबाहकुन महरूमी की मौज ने दुनिया को तह उबाला कर रखा था। इस पर कुफर और गुमराही के तारीक और दबीज पर्दे पड़े हुए थे। हालांकि आसमानी मजाहब और अदियान मौजूद थे, मगर इनमें तहरीफ ने जगह पा ली थी और जोफ सरायत कर गया था। इसकी गिरफ्त खत्म हो चुकी थी और वो महज बेजानो बेरुख किस्म के जामित रस्म व रिवाज का मजमुआ बनकर रह गए थे। जब इस दावत ने इंसानी जिंदगी पर अपना असर दिखाया, तो इंसानी रूह को वहमो खुराफात, बंदगी व गुलामी, फसादो ताफुन और गंदगी व अनारकी से निजात दिलाई, और माशरा इंसानी को जुल्मो तुगयान, परागंदी व बर्बादी, तबकाती इम्तियाजात, हुक्काम के इस्तबदाद यानी जुल्मो सितम, और काहिनों के रुस्वाकुन तसल्लु से छुटकारा दिलाया। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने हर गलत चीज़ को ख़त्म कर दिया, चाहे वो किसी सियासत के नाम पे थी, चाहे वो किसी तबकाती इम्तियाज़ के नाम पे थी, हुक्मरानों के गलत जुल्म व सितम के मामले थे, या फिर कहीं इंसान की तबीयत के अंदर ऐसी चीज़ें आ चुकी थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और इसी तरह से दुनिया को इफ़्फ़त व नज़ाफ़त, इजादात व तामीर, आज़ादी व तजद्दुद, मारफत व यकीन, वसूक और ईमान, अदालत व करामत और अमल की बुनियादों पर ज़िंदगी की बालीदगी, हयात की तरक्की और हकदार की हक रसाई के लिए तामीर किया। कितना बड़ा एहसान है इंसानियत पर अल्लाह के नबी का। कितनी ज़रूरत है आज हम इसके लिए फिर मेहनत करें। ये जो आज इंसान जानवरों से नीचे गिरता जा रहा है ना, आज ख्वाहिश का बुत ऐसा बढ़ा कि किसी जायज़ चीज़ के ऊपर तो खुशी है ही नहीं, ना जायज़ माल पे, ना जायज़ ख्वाहिश पे। हर चीज़ में तजुर्बे कर कर के अपने आप को उल्टा लटकाने के शौक़ में इंसान है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अगर दिल में है तो इत्मीनान है। आज भी अगर थोड़ी बहुत खुशी दिलों दिमागों में है तो वो लफ्ज़ मुस्लिम पे है। पूरी दुनिया आप देखिए किस घबराहट का शिकार है। और वाकई बात है कि क़यामत के करीब जब कब्रिस्तान के पास से लोग गुजरेंगे तो कहेंगे, काश तुम्हारी तरह मैं ज़मीन की पीठ पर नहीं उसके पेट में होता। आने वाला दौर ऐसा ही दौर बन के नज़र आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके लिए अभी से अपनी नस्लों को तैयार करें, और नस्लें तैयार नहीं होंगी जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा। हमें मुसलमान बन के जीना है, अदरवाइज़ इस जीने से तो फिर जाना ही बेहतर है। हम भी पिसेंगे, याद रखिए, अगर हमने इस इस्लाम को ना लिया, अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी को अपने लिए ना निशानी बनाया। इन तब्दीलियों की बदौलत जज़ीरतुल अरब ने एक ऐसी बाबरकत उठान का मुशाहिदा किया जिसकी नज़ीर इंसानी वजूद के किसी दौर में नहीं देखी गई, और इस जज़ीरे की तारीख अपनी उम्र के इन जगाना रोज़गार अय्याम यानी यूनिक दिन थे जिंदगी के, उनमें इस तरह जगमगाई कि इससे पहले कभी नहीं जगमगाई थी। आप देखिए, अल्लाह ने अपने नबी को किसी दुनियावी स्कूल में नहीं भेजा, कोई आपका उस्ताद नहीं बना, किसी ने किसी चीज़ को नहीं देखा। क्या कुछ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में। दिल तो ये चाह रहा है कि इस पे रुक कर घंटों बात करें फिर आगे चलें, क्योंकि आज हम इन सारी चीज़ों को ओवरलुक करके आगे जा नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी आज जिस दो राहपन का शिकार हो चुकी है ना, उसमें सबसे मुश्किल यह है कि हम वो पैगाम भूल गए। हमने आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को एक कोड समझकर यूज़ किया। हमें अभी नहीं पता कि वो कामयाबी की राहें क्या थीं, वो मंजिलें क्या थीं, कैसे अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के ज़रिए से ये खूबसूरत काम करवाता रहा। कोई बात जो इस टॉपिक को सुनकर जहन में आई, आप इस पे कोई क्विक बात करना चाहें तो आप 10 मिनट के लिए डिस्कशन इस पे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, ऐसी बातें जो होती हैं ना, इनको बस ऐसी गुजर जाने से ना खतरा ये होता है कि दिल और सख्त हो जाता है, एक और इजाफा हो जाएगा। जी, बात कीजिए।
जी, जजाकअल्लाह खैर। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ सर जी, जी बिल्कुल। देखिए साजी, मैं भी सोचती थी कि कितना खूबसूरत इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें देखने को मिला, कि देखें कि वाकई हम खुद साज़ है ना, हम सिर्फ अपने आप बना रहे हैं। आज आज के मुसलमान की दौड़ देखें, आज का लाइफस्टाइल हम लोगों के देखें, हमारी सोचे देखें, दुनिया के लिए ऐसे लपकते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना लालच दुनिया का और इतनी लंबी लंबी उम्मीदें, बस 100 बरस का कल की खबर नहीं वाली बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, इतनी मेहनत, और आखिर ये लोग तारीफ बना के गए ना, तो हमारे लिए तुम मुझे ये सोचते कि अमल की बात है कि पहले हम अपने आप को तो ठीक कर लें, हम खुद अपने आप को ठीक करें, हम अपने घरों के किबले दुरुस्त करें, हम अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज करें, हम अपनों में इस चीज का तहरीक को बढ़ाएं, हम इस सोच को उजागर करें, सोचें बदलें, इससे अल्लाह से ताल्लुक कायम करें, अल्लाह से रातों की घड़ियों में मांगे। अल्लाह ताला ने आप ससुरों को कहा या अय्युल मुजम्मिल या अय्युल मुद्दसिर, तो फिर इसी नाते से उम्मत को भी हुक्म दिया ना। तो अगर हम चाहते हैं